चौथा अध्याय, अध्याय का शीर्षक कंस का अत्याचार है ना। हाँ, राजा कंस का अत्याचार, ठीक है, राजा कंस का अत्याचार। सबसे पहले जो है मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद इसके पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक, हालांकि 35वां श्लोक यहाँ पर बोर्ड पे है, पर इससे पहले 4 श्लोक हैं, उसके तात्पर्य नहीं है। तो पहले हम उन श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे, तो सबको क्रम मालूम पड़ जाएगा, और उसके बाद फिर हम श्लोक का जो है सामूहिक उच्चारण हम करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि इसका शीर्षक जो है, अध्याय चौथे अध्याय का शीर्षक है राजा कंस का के अत्याचार। तो अभी अत्याचार करने की तैयारी हो रही है, तो ये सारा जो है, हाँ, अभी जो ये सारा ये जो बातचीत है, वार्तालाप है, तो ये हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली उसको उकसा रहे हैं। एक आदमी जो है वो खड्डे में जा रहा है, बाकी सब मिलकर धकेल रहे कि जल्दी जाए। तो यही दरअसल आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण यही होते हैं। नीम करेले को कहते हैं तू कितना मीठा, करेला नीम को कहता है तू कितना मीठा है, उसके और उसके अपने अपने फायदे होते हैं। इसलिए तो अभी हम 31वें श्लोक से जो है हम देखते हैं। परसों 30वां श्लोक जो है श्री कृष्ण हरि प्रभु ने उस पर चर्चा की थी। तो तब ये बताया था कि क्या सलाह जो है, कंस के जो मंत्री हैं वो कंस को क्या सलाह दे रहे हैं। तो आज से जो है कंस के मंत्रियों की दी गई सलाह जो है आप सुनिए। अगर भागवतम में नहीं होता तो शायद कोई नहीं सुनता, भागवतम है इसीलिए हम सुन रहे हैं। ये जानना जरूरी है, क्योंकि ईशोपनिषद भी कहता है कि विद्या और अविद्या दोनों चीज़ों का जानना जरूरी है। तो 31वां श्लोक का जो है अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भोजराज कंस, यदि ऐसी बात है तो कैसी बात है, पहले कि जी उनका जन्म ले चुका है लड़का, है ना, माया देवी चंडी देवी दुर्गा देवी जो है वो आई हैं और उन्होंने जो है भविष्यवाणी की है। तो दुर्गा देवी की भविष्यवाणी को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं लोग। तो हालांकि दुर्गा देवी को कभी उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मगर उनकी भविष्यवाणी को काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। तो सभा बैठी है, मीटिंग बैठी है, और वहाँ पर मंत्री कह रहे हैं, हे भोजराज यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांव नगरों तथा चरागाहों में उत्पन्न हुए हैं मार डालेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को जो है हम मार डालेंगे, जितने बच्चे हैं, हो सकते हैं इनमें से उनके खुद के बच्चे भी हों जो पिछले, मगर कोई परवाह नहीं है, हम आगे देखेंगे। तो 32वां, सारे देवता आपकी धनुष की डोरी प्रत्यंचा की आवाज़ से सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं सारे देवता, अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूह से छिदकर कुछ सुरगन यानी देवता जो घायल हो चुके थे किंतु जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, युद्ध भूमि छोड़ के अपनी जान लेकर भाग निकले। हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर अपनी प्रशंसा आपकी प्रशंसा करने लगे, और उनमें से कुछ अपने वस्त्र तथा केश खोले हुए आपके समक्ष कहने लगे, हे प्रभु हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। तो कंस को जो है, कंस को याद दिलाया जा रहा है जी। तो ये सच है, कंस बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहुत ही खतरनाक। तो ऐसा कोई युद्ध हुआ होगा पहले, तो वो याद दिलाई जा रही है। और अब जो है हम आज के जो श्लोक है इस पड़ाव पे जो है हम पहुंच गए, इसका हम सामूहिक उच्चारण करेंगे। नात्वं विस्मृता शस्त्रानां शस्त्रास्त्रान, सॉरी सॉरी मेरी गलत, सॉरी। नात्वं विस्मृता शस्त्रास्त्रान अस्त्रान विरथान भया समावृतान वृतान हमस्यानासक्त विमुखान भग्नचापान अयुध्यता। नात्वं विस्मृता शस्त्रास्त्रान विरथान भया असंवृतान हमसे अनासक्त विमुखान भग्नचापान अयुध्यता। नात्वं विस्मृता शस्त्रास्त्रान विरथान भया संवृतान हमसे अनासक्त विमुखान भग्नाचापान अयुध्यता। इसके क्रम को ठीक कर, मैं क्रम ठीक नहीं आया। स्मृता शस्त्रास्त्रान रथान भया संवृतान हमसा साशक्त विमुखान विस्मृता शस्त्रास्त्रा वृथान भय संवृतान आसक्त विमुखा भग्नचापान अयुध्यता। अन्यासक्त विमुखान भग्नचापान अयुध्यतः। धन्यवाद। शब्दार्थ तुम्हारे पीछे दोहराइए। ना नहीं, त्वम आप विस्मित शस्त्रास्त्रान जो अपने हथियार चलाना भूल चुके हैं, विरथान रथविहीन भय संवृतान भय से भौचक के हंसी मारते हो अन्य आसक्त विमुखान जो लड़ने में अनुरक्त ना रहकर कुछ अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, भग्न चापान टूटे धनुषों वाले अयुध्यतः अतः युद्ध ना करते हुए। तो जब देवतागण रथविहीन हो जाते हैं, जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। कंस के महानता का वखान हो रहा है, ठीक है ना। किन किन सूरत हालों में जो है आप देवताओं को बख्श देते हैं। सो तात्पर्य देखिए, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जो है बिल्कुल, तो इसका विरोधाभास जो है वो तात्पर्य में झलक रहे हैं। युद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं। जब शत्रु के पास रथ नहीं होता, वह भय के कारण युद्ध कला भूल जाता है या फिर युद्ध नहीं करना चाहता, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कंस के मंत्री उसे स्मरण दिला रहे हैं थे कि अपनी शक्ति के बावजूद भी वह युद्ध के नियमों से अवगत था, इसलिए उसने देवताओं को उनकी अक्षमता के कारण क्षमा कर दिया। मंत्रियों ने कहा, किंतु प्रस्तुत आपत्ति में ऐसी दया या सैन्य शिष्टता दिखाने की घड़ी नहीं रह गई। मतलब अभी तक तो आप थे ऐसे, पर अभी इस वक्त जो है इसकी जरूरत नहीं है। किसके खिलाफ जरूरत नहीं है? नियत्र के बच्चों के खिलाफ जरूरत नहीं है। अब तो आपको हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। किससे? जो अभी पैदा हुए हैं जुमा चार दिन, उनसे, ठीक है ना। इस तरह मंत्रियों ने कंस की को सलाह दी कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर वह किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करें। शत्रु कौन है? शत्रु हैं जो अभी हमने 31 में देखा, जो पैदा हुए अभी जितने बच्चे पिछले 10 दिनों में, ये सारे में शत्रु हैं, और इसमें शिष्टता दिखाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली कत्लेआम मचा दो, तो ये बेसिक आइडिया है। और अगर आप देखें इस पूरे क्रम को, जैसे शुरू चौथा ही अध्याय है, शुरुआती अध्याय में पहला अध्याय जब जिसके अंदर भगवान का आविर्भाव हो रहा है, तो उसके अंदर कि क्यों, क्योंकि भक्तों के पुकार पर, क्योंकि भक्त जो है बहुत कष्ट में है, तो भगवान का आविर्भाव, बेसिक आइडिया पहले अध्याय का। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भगवान का गर्भ में आ गए तो गर्भस्तुति हो रही है, देवता आके जो है भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जो उनकी प्रार्थनाओं के को स्वीकार करते हुए एक नर रूप धारण करने को राजी हुए। फिर तीसरा अध्याय कि भगवान का जन्म हो जाता है, ठीक है। अब इन तीनों वे में तो जो है अभी तक जो था कि भगवान का आविर्भाव को लेके सारी बात हो रही, अब एकदम जो है गियर शिफ्ट हो रहा है, अब आ रहा है कंस का अत्याचार। यानी कि पहले भगवान का आविर्भाव, और अब भगवान के आविर्भाव के बाद भगवान की लीलाओं के लिए जो है माया तैयारी कर रही है। तभी अत्याचार बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा धीरे धीरे, तो फिर जाके जो है, तो माया जो है अब वो तैयारी जो है वो, जैसे होता है जब कोई खेलना होता है, जैसे मान लो शतरंज खेलनी है, तो सारी गोटियां जो है पहले बिसात पे लगाई जाती हैं ठीक से। तो जब कोई खेल होता है, तब कोई किसी भी खेल के लिए जो है पहले जैसे प्लेयर से उनको पोजीशन किया जाता है, तो इसी तरीके से लीला का मतलब भगवान के लिए खेल है। तब ये सारी गोटियां जो अब प्लेस हो रही हैं कि क्या होगा, क्या वजह बनेंगी, क्या चीज़ें होंगी, ठीक है ना। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो है ये जो हो रहा है ये मैकेनिकली हो रहा है, ये जीव की इच्छा के वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर कंस का जो यहाँ पर है कि जो रोल आप देख सकते हैं कि माया के जो है प्रकोप में, अब माया के प्रकोप में कंस कैसा है, माया के प्रकोप में कंस ने दावत दी माया को। अब अगर माया की बात माननी होती तो बोल देते भैया उसका हो गया छोड़ दो उसे, नहीं, अब जो है उसने उल्टा सबको एक एक बच्चा मार के जो है उसका जो है कलेजा नहीं भरा, अब जितने बच्चे हैं वहां सबको मारो। तो ये माहौल अब बना। अब जो है इस अध्याय में जो मुझे जो पढ़ने के वक्त जो चीज लगी सबके लिए है, पर खास तौर पर जो है कुसंग का प्रभाव जो है यहाँ, तो कौन और कैसे, और लीडर्स के लिए खासतौर पर। यहाँ पर कंस जो है, आप अध्याय का शीर्षक है राजा कंस का अत्याचार, तो राजा है, तो राजा या जो लीडर है उसका कैसा संग होना जरूरी है, और क्या संग जो उसको मरवा देता है। सो जो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हाँ करो, पहले आपने यूं किया था, ऐसे क्या चापरू से सर, तो यस मैन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो लीडर के लिए सबसे खतरनाक, एक राजा के लिए सबसे खतरनाक अगर कोई संग हो सकता है वो यस मैन का संग है, चापरूसों का संग है, कि वो वही बात करें जो तुमको पसंद हो वो बात करेंगे, तो वो वाला सिस्टम जो है। तो वो उसको वो उस तरह की बातें उसको करके जो है, और जाहिरी बात है जब ऐसा होता है, ऐसा संग आपको मिल जाए तो बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, ठीक है ना। सो तो इसके अब बात ये हो रही है, अब मजेदार बात जो है, देखने वाली बात जो वो ये है कि चलो कंस का तो समझ आता है, उसको तो मौत का खौफ है कि जी वो बच्चों को मारने के लिए तैयार हो गया, जी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ तक आ गया, जब उसने अपने जो है पहले इतने 7 भांजे मार चुका है तो अब और सही, उसकी तो बात समझ आती है। मगर इनका क्या इसके अंदर फायदा है, इन जो ये जो मिनिस्टर हैं, ये जो सारे मंत्री हैं, ये भी उसके साथ कनेक्टेड है कि अगर ये राजा रहेगा तो हम मंत्री रहेंगे। उनको पता है कि हम जैसे हैं, हमको तो कोई मंत्री नहीं रखेगा, हमको कौन मंत्री रखेगा, जब ऐसा राजा होगा तो हम मंत्री होंगे। तो ये वो पूरा जिसको हम कहते हैं, जो एक, एक जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ऐसे बनती है एस्टेब्लिशमेंट कि एक बदमाश खड़ा है, उसके पीछे 10 बदमाश और खड़े हैं, उसको छोटे बदमाश। तो वही तभी जैसे मैंने शुरू में बोला कि वो असुर का काम है वो दूसरे असुर की तारीफ करे, ताकि उसका तारीफ कर करके जो है उसका झूठा अहंकार और बनाए, उसको और बांस पे चढ़ाए उसको, ताकि वो करे और वो अपना उल्लू सीधा करे उसके पीछे खड़े होके। जय श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर नित्याय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सो ये बेसिक आइडिया है एक 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 आसुरी, और इसका और इसको इसको लेजिटिमाइज करने के लिए, इसको जो है अमली इसको जो है आप मतलब इसको इसको पुष्ट करने के लिए, इसको सही साबित करने के लिए, तो इसको पीछे कोई मूल्य देने की जरूरत है, यानी कि किसी और मूल्य का दुरुपयोग करने की जरूरत है। वो क्या है? वफादारी, लॉयल्टी। ये इनके लॉयल्टी का सबूत है, ठीक है ना, कि उसको जो है और बच्चे मारो, ठीक है ना। ये अपना भांजा, अब वो अंदर सोच रहे होंगे कि जो अपना भांजा मर सकता है उनके लिए बाकियों का बच्चे मारना क्या मुश्किल है, बच्चे मरवा दो सबके। तो ये इस तरीके से जो है, ऐसा लीडर, ऐसा तो पिटफॉल्स है एक लीडरशिप का, बहुत खतरनाक। उसको उसके सबसे पहली जो है, अगर कोई राजा जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकता है या कोई लीडर, वो ये कि अपने आसपास जो है ऐसे लोग इकट्ठे कर ले जिसकी हाँ में हाँ मिलाए। तो ये हर किसी के लिए, ये एक कोई सेकुलर, आप इसको एक गवर्नमेंट के नजर से देख सकते हैं, आप इसको इस्कॉन के अंदर भी लागू कर सकते हैं। ये पर्पट जो प्रभुपाद ने लिखे हैं, ये सबके लिए लिखे हैं, पर खासतौर पर भक्तों के लिए लिखे हैं। तो जब हो सकता है ये हम पढ़ रहे हैं तो कंस मेरा क्या लेना देना, वो ही चीज, क्योंकि जो इंसान के अंदर जो है एक स्ट्रगलिंग साधक के अंदर दोनों स्वभाव होते हैं, दैवी और आसुरी, है ना। क्या है, द्वौ स्वर्ग लोक है, कैसा था, दैव आसुरेव च द्वौ स्वर्ग, हाँ, विष्णु भक्ति स्मिता देवा दैवम च असुरम च विपर्याया। सो पद्म पुराण का श्लोक है, और पहला पहली लाइन जो है भागवत गीता में भी ऐसी लाइन है, द्वौ स्वर्ग लोक है दैव आसुरम एव च, यस ये तो 16वें अध्याय में सेम, और सेम विष्णु पुराण सॉरी पद्म पुराण में सेम श्लोक है, नेक्स्ट के दो लाइन अलग है कि स्वभाव बता रहे। तो एक इंसान के अंदर दैवी और आसुरी गुण, ठीक है ना। तो मैक्सिमम केस में जनरली जब प्रभुपाद जो जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप कई बार जब हम भागवत गीता में या सॉरी प्रभुपाद के किसी भी ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं कि भक्त ऐसा होता है, और फिर हम आसपास देखते हैं और कहते हैं अच्छा ऐसे तो नहीं है, या अपने गृहमान में देखते हैं तो कई बार हो सकता है ऐसा लगे कि अपना अवलोकन कर रहे हो तो ऐसा लगे हम तो ऐसे नहीं है, तो माफ कीजिएगा आपकी बात हो भी नहीं रही है। द टर्म भक्त जो है, जैसे आप आम, जब मैं कहता हूँ आम, आम का मतलब क्या समझते हैं आप? आम आम मैंगो आम, एक है आम बात और एक है आम मैंगो, उसका क्या मतलब समझते हैं आम का जी? हाँ आम, कैसा आम? मीठा आम, यानी पका हुआ आम, मैंने बोला नहीं था। कई शब्द जो होते हैं उसके अर्थ फेस वैल्यू पे लिए जाते हैं, तो जब आप आम बोलते हैं तो मान के चलते मीठा आम, नहीं तो अगर आपको कच्चा आम चाहिए बोलेंगे कच्चा आम, हरा आम, खट्टा आम, ठीक है ना। तो जब आप आम बोलते हैं यानी उसका फेस वैल्यू पे चीज ली जाती है, उसी तरीके से जब आप भक्त शब्द इस्तेमाल करते हैं फेस वैल्यू पे ली जाती है, सो फेस वैल्यू क्या उस भक्त का? फेस वैल्यू का मतलब है एनी डिवोटी हु इज ऑन द लेवल ऑफ भाव एंड अबव इज कंसिडर्ड अ डिवोटी. भक्ति के जो 9 स्टेजेज हैं श्रद्धा से लेके प्रेम तक, उसमें भाव और उसके ऊपर के जो स्टेज हैं, इन दोनों स्टेजों के लिए भक्त की संख्या दी गई है. इससे पहले के स्टेज के जो हैं उनको साधक भक्त कहा जाता है, प्रैक्टिसिंग डिवोटी, साधक जो आप अक्सर आप सुनते हैं. सो उसकी ये, अब जो 99% लोग जो आप देखते हैं इस्कॉन के अंदर, वो इस पहली कैटेगरी में आते हैं. अब जब उसकी बात हो ही नहीं रही है, बात उसकी हो रही है, मैंने अपने आप को डाल लिया उसके अंदर. प्रभु जी भक्त लोग ऐसा करते? भक्त लोग ऐसा नहीं करते, साधक भक्त ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके अंदर ये दोनों चीजें मौजूद होंगी. दैवी आसुरी गुण दोनों जो है एक साधक के अंदर जो है प्रैक्टिस होंगी, जरूर होंगी. होंगी इसीलिए तो साधना कर रहे हैं, नहीं है तो फिर साधना करने की क्या जरूरत है? अगर वो बन गया है भक्त तो फिर कौन सी साधना है? फिर तो ठीक है, फिर तो सिद्ध हो गया वो. तो ये गलतफहमी होती. तो जब हम हमारे जिस जनरली जब हम डील कर रहे होते हैं आपस में अपने आप को इंक्लूड करके, तो हम इस कैटेगरी में आते हैं साधक, जिसके अंदर दैवी गुण भी है आसुरी गुण भी है. तभी आप देखते कोई भक्त किसी के साथ बड़ा अच्छा है, दूसरे के साथ बहुत बुरा है, तो वो क्योंकि साधक है. तो इसलिए जैसे ये वाला प्रसंग है, इसमें इस वाले पहलू पे देखना बहुत जरूरी है. जब बतौर साधक, मैं साधक भी हूं, मेरा एक रोल है, और हो सकता है मैं एक लीडर हूं, मेरा दूसरा रोल है, मैं राजा हूं, व्हाटएवर, तो मेरे अंदर दोनों चीजें होंगी. तो उस वक्त इसीलिए जो है बड़े सावधानी बरतने की जरूरत है. जैसे अगर आप लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत श्लोक संख्या 5 का आखिरी लाइन आप पढ़ेंगे और श्लोक संख्या 6 का पहली लाइन पहला, तो वहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरीके से कैसे भक्तों को जो है चुन के बहुत सावधानी पूर्वक उनका चुनाव करके उनका संग करना चाहिए, क्योंकि ये अदरवाइज इस तरीके का संग है. तो ये सारे मिलके जो है उस कंस को जो है वो जो हो सकता है उसकी उसका विनाश बहुत लेट आता, काल करे सो आज कर दिया उसके लिए, जल्दी बड़ा बड़ा के हाँ बच्चे मारो सारे. तो ये तो अब अच्छा कंस का कैसा है? अब जैसे उस दिन पहले नशी का उसमें का लेक्चर था, उसके अंदर भी जब देख रहे थे कंस का, जो कंस को सारी फिलॉसफी मालूम है पिछले अध्याय में ही जो है, सॉरी अध्याय के शुरुआत में ही जब कंस को पता चलता है जी नहीं ये नहीं है बच्चा, तो उसने माफी मांगी और बड़ी फिलॉसफिया बोली ना देवकी को, कि तो बड़ा जेन्युइन लगा. क्यों? अब जब आप वो हिस्सा सुन रहे होंगे पढ़ रहे होंगे आपको लगा बड़ा अच्छा आदमी है कि देखो जी अब उसने कर दिया, अब तो मार दिया, अब क्या कर सकते हैं, मरा हुआ तो वापस नहीं आता, मगर उसने जो है उनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया, उनसे माफी मांग ली, पैर पे गिर के माफी मांग ली, और क्या कर सकते हैं. तो ये दूसरा पार्ट है, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये पूरे ब्लैक या पूरे व्हाइट नहीं है, ये शेड्स हैं इसके अंदर. और वही आमतौर पर जो है आप लोग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी अच्छे नहीं होते. तो मगर संग जो है इसका, उससे उसका जो है आसुरी गुण निकल के आता है. तो यहां पर जब मैं बात कर रहा था, जब वो अच्छी अच्छी बातें जब वो कर रहा था तो उससे साफ पता चल रहा था उसको पता है कि फिलॉसफी क्या है. मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको ज्ञान का अभाव है. कई बार लोग सोचते हैं कि ज्ञान का अभाव से इशू होता है, होता है इशू, मगर उससे भी बड़ा इशू होता है जब आपकी नीयत ठीक नहीं होती. वो मूल्य है, उसमें ज्ञान की कमी के वजह से नहीं है वो इशू, मूल्य की कमी की वजह से. तो जब आपकी नीयत खराब है, आपका जो है आप ईमानदार नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप उस ज्ञान को मरोड़ेंगे. तो यही सेम चीज जो है जब हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के अंदर भी, ये बहुत जरूरी है ये चीज देखना कि मैंने अपना मेरा एक मकसद है, मैंने सोच लिया मैंने ये करना है, अब करवाना कैसे किसी और से? तो फिर जो है इसको सिद्धांत को मरोड़ो. नहीं नहीं प्रभु जी भागवत गीता में यूं कहा गया, नहीं नहीं ये ऐसा भक्त लोग ऐसा कहते हैं. बात हो सकती है सही हो, बात कहने की नीयत गलत हो. तो ये जो यहां पर मंत्री बोल रहे हैं बात गलत नहीं कर रहे, बात सही है, वो तो फैक्ट्स बता रहे हैं कि जी कंस ने जब लड़ाई की थी देवताओं के साथ यूं किया था, ठीक है, मगर उस टॉपिक को यहां पे लाने का मकसद क्या है? उसका मकसद है उसको इस तरीके से उसका फॉल्सी को बढ़ा के उसे गलत काम और करवाना, ताकि इनकी पोजीशन सिक्योर रहे. तो ये इवन आप देखेंगे जो इवन लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर पॉलिटिक्स होती है, और वो पॉलिटिक्स जब होती है वो पॉलिटिक्स कब होती है, जब लेस देन डिवोटीज, जो मैंने डिवोटी का आपको डेफिनेशन बताया, यानी पीपल जो साधक हैं, यानी जो जो भाव से नीचे के स्तर के हैं, उनके अंदर ये गुण ये दुर्गुण भी पाए जाएंगे। तो हाउ टू डील विद दिस, भाव एंड अभाव में ये दुर्गुण नहीं पाए जाएंगे, उनके अंदर होंगे नहीं, तो 10 बैठे हो 50 बैठे हो नहीं निकल के आएगा। क्यों, जैसे आप देखेंगे इवन लाइक जैसे महाभारत में हम देखते हैं दुर्योधन का सेम कैरेक्टर है, कंस है, दुर्योधन है, असुरी प्रवृत्ति सेम, वो उनका फेमस श्लोक है महाभारत का, ये आप लोगों ने हो सकता है सुना भी हो कि जानामि धर्मम नाच प्रवृत्ति, मुझे ऐसा नहीं मुझे धर्म पता नहीं है, जानामि धर्म, मुझे धर्म मैं जानता हूं, नाच प्रवृत्ति, पर मेरी धर्म पालन करने की प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम नाच निवृत्ति, मुझे अधर्म क्या है यह भी पता है क्या नहीं करना चाहिए, पर उसमें अपने आपको रोकता नहीं हूं, मैं रोक नहीं सकता। अब क्यों ऐसा क्यों है, मैं धर्म जानता हूं पर मैं पालन नहीं करता, पर मैं अधर्म जानता हूं पर अपने आप को रोकता नहीं, क्यों, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। क्यों, अंदर कौन बैठा है, हाँ, तो इसीलिए जो है त्वया ऋषिकेश हृदय स्थान स्थेन स्थितेन, हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शून्य, हृदय में जो आप बैठे हो ना भगवान, आप बैठे हो तो क्या करें, यथा नियुक्त होशी तथा करोमी, जो आप कराते हो मैं करता हूं। इट डजंट, आइडिया समझ रहे हैं, ज्यादा खतरनाक है ये बंदा जिसको फिलॉसफी मालूम है पर अंदर से बदमाश है। सो ये अंदर से बदमाश क्यों होता है, ये अंदर से जो बदमाश होता है ये खराब एसोसिएशन से होता है। आप सवाल उठ सकते हैं ना, प्रभु जी ऐसे तो कोई भी बंद नहीं, कोई भी नहीं होता, जिस जिसका संग खराब है वो होता है, तब आता है, ये एसोसिएशन से आता है। और वो संग खराब क्यों है, क्योंकि शुरुआत मैंने करी होती है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं जिसमें मैं शामिल नहीं हूं, मैं हमेशा शामिल हूं, किसी भी वारदात में हमेशा मैं शामिल हूं। तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साधक की, तो जो स्टेप वन है उस पे साधक को जो है ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद तो और चीजें जुड़ती जाएंगी और वो मामला और खराब हो जाएगा। अगर कंस जो है इसको बिल्कुल उल्टा है ना, वो क्या कह रहे हैं कि जी जब तक आप नहीं होते या ये सारे नहीं होते तो मैं बुरा नहीं होता। अब इसको घुमा लो, जब तक तुम बुरे नहीं होते तुम्हारे साथ नहीं होते, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये ब्लेम गेम है बेसिकली, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे, तो ये डिक्टेट करना इसको इस तरीके से लोगों को, फिर मिसगाइड करना, खुद मिसगाइड होना, मैं लीडरशिप के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये राजा है खास, और कोई भी लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बार बार इसको चेक करे कि मेरे साथ वाले जो वो कौन है, मेरे मियाँ मिट्टू हैं कौन है जो मुझे मेरे डिसीशंस को क्वेश्चन नहीं करते, और किस नाम पर क्वेश्चन, लॉयल्टी के नाम पर क्वेश्चन नहीं करते, वो लॉयल्टी नहीं है, वो लॉयल्टी आपको बता रहे हैं खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है। सो बाय चॉइस है, क्योंकि खराब एसोसिएशन अच्छी एसोसिएशन बाय चॉइस है, आपने क्या उस टाइम पे आप लेना चाहते थे। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे इसके अध्याय का पहला जो श्लोक है और उसके तात्पर्य, प्रभुपाद एक बहुत खतरनाक चीज बता रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ आप सुनिए, मैं उस स्पेसिफिक सेक्शन को पढ़ता हूँ बस, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है, हम सब के लिए, मतलब जब हम उस सिचुएशन में पड़ जाए, उस परिस्थिति में पड़ जाए तो। एक मिनट कहाँ जा, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में पहले अध्याय पहले श्लोक से पढ़ रहा हूँ, इस अध्याय का श्लोक संख्या 10:4:1, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि द्वारपाल कुत्ते वहाँ पर जो लगे हुए थे के कुत्तों के तुल्य थे, द्वारपाल जो उनके, रात में ध्यान से सुनिएगा, रात में कुत्ते सड़कों पर द्वारपाल जैसा कार्य करते हैं, रात में, ठीक है। यदि एक कुत्ता भौंकता है तो सब कुत्ते उसी के उसी समय भौंकने लगते हैं। अब बड़ी मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है, ये प्रभात बता रहे हैं, यद्यपि इन कुत्तों को द्वारपाल का कार्य करने के लिए कोई नियुक्त नहीं करता, किंतु वे अपने पड़ोस की रक्षा करना अपना करते हुए समझते हैं। सेल्फ अपॉइंटेड अथॉरिटी, किसी ने नहीं बोला वहां पर खड़े होने के लिए, तो खुद खड़ा हो जाता है। तो ये वो चीजें हैं जब आप अथॉरिटी एज्यूम कर लेते हैं। कंस के केस में क्या था, अथॉरिटी कौन थी, अथॉरिटी उग्रसेन था, उसको उठा के उसने पटक दिया, अथॉरिटी एज्यूम कर ली। तो जब आप, ये वो कार्डिनल मिस्टेक थी। अगर आज उसका ये संग है तो आप कहते ना उसका तो संग है, उसकी नहीं, गलती उसकी ये थी, उसको किसी ने द्वारपाल नहीं बनाया, उसको किसी ने राजा नहीं बनाया, उसको किसी ने लीडर नहीं बनाया, उसने लीडरी हथिया ली। अब उस लीडरी को कायम रखने के लिए उसको ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और वो लोग क्यों उसके साथ हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो साथ उसके साथ साथ देंगे। और वो कैसे साथ देंगे, वो उसका साथ इसी में, हर वो वैल्यू दे विल, वो हर उस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे फॉर द रॉन्ग रीजन। सो ये बड़ा फिर विशेष सर्कल है। तो इसीलिए जब लीडरशिप जो चीज है खासतौर पर, वो जब तक ना सामने से दी जाए शुड बी वेरी रिलक्टेंट। आपने सुनी, आप इस्कॉन का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, आप 200 साल पहले चले जाइए, ज्यादा नहीं, ठीक है, इस्कॉन नहीं था, गौड़िया मठ नहीं था, 125 साल ले लो, चलो 1918 से पहले नहीं था, 101 साल उससे पहले। आप जब हम पढ़ते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की जीवनियां पढ़ते हैं, बीचों एग्जाम्पल्स हैं, उनको बोलते हैं जी आप जाओ शिष्य बनाओ, आप प्रचार करो, कोई आगे नहीं आता आसानी से, उसको धकेलना पड़ता है। क्यों, वो सारे पागल थे या वो सारे बुजदिल थे या वो आलसी थे, कामचोर थे, भक्ति या सेवा नहीं करना चाहते थे। ये मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ऑनेस्टी बरकरार रखना। राजा खासतौर पर जब वो लीडर है, उसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव यानी वो सेवक है, एक बंदा जो जिसको पदवी लीडर की दी गई है या राजा की दी गई है, काम उसका सेवा करना है, बहुत मुश्किल है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ इंटीग्रिटी इसके लिए, करने के लिए बहुत प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, बहुत तैयारी की आवश्यकता है, एंड देन ही कैन ग्रेजुअली, और फिर तब जाके उसकी ऐसा नियत है, इस तरीके से आया, देन ही विल हैव दैट काइंड ऑफ एसोसिएशन कि जो उसको जो है सही रास्ता है पे लेके चले, और वो खुद भी तलाशेगा फिर कि जो कहां मुझे ऐसा एसोसिएशन मिले, एंड देन आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी कसौटियां जो मैं, जब मैंने पढ़ा मुझे लगा कि ये इससे रिलेट करती है कि वाई कंसा बिकेम लाइक दैट, बिकॉज ही वॉज लाइक दैट, इट सिंपली एग्रेवेटेड, अब वो सिर्फ बढ़ गया उसका मामला, बस और कुछ नहीं हुआ। आगे फिर आप देखेंगे, अब फिर नेक्स्ट चैप्टर, तो ज़्यादा श्लोक नहीं है अभी इसके अंदर, उसके बाद जो है आप नंद महाराज और वसुदेव का इंसिडेंस पर चला जाएगा। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, किसी का कोई सवाल या कोई टिप्पणी तो ज़रूर। ठीक है, सबका है,
हरे कृष्ण, थैंक यू जी, आपने इस टॉपिक पे लिया। मेरे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन सडनली एक रिलेवेंट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम, आप बोल रहे थे इस कौन के साधक भक्त जैसे हम होते हैं
जी,
बिकॉज इस कौन इज लाइक ए यूनिक सोसाइटी, इसमें हर लेवल के भक्त भी हैं, ऑन सेम आश्रम ऑन सेम वे कि वी हैव अ साधक भक्त, वी हैव अ मध्यम अधिकारी, वी हैव अ उत्तम अधिकारी आल्सो डीलिंग विद थ्री, एंड बीइंग ए न्यूफाइट इट इज अ कंडीशन, कि उनकी कंडीशन भी होती है कि न्यूफाइट उसे भी बोला जाता है जो सात वाले भक्तों के साथ डील करना नहीं जानता
जी
अच्छी तरह से
जी जी बिल्कुल।
इसीलिए जो भक्ति रसाम भक्ति उपदेशामृत है उसमें बताया कि द प्राइम वे ही कैन एडवांस इज बाय डीटी वर्शिप, है ना, डीटी वर्शिप के माध्यम से वो उन्नति भी कर सकते हैं. सो हाउ, मतलब कैसे वो जज कर सकता है, क्योंकि एसोसिएट भी हो रहा है और उसका पिटफॉल भी है, मतलब उसमें और ये अवगुण भी है, तो और कई भक्तों को हमें ऐसा मिलता है, चांस भी नहीं मिलते कि डायरेक्ट डीटी वर्शिप भी कर सके हम, क्या कुछ कर सके. सो हाउ वी कैन सी दिस सिनेरियो, मतलब इसमें
एज आई अंडरस्टूड, मैं समझ पाया हूँ आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं. एक है कि हमारा जो मेजॉरिटी जो देखते हैं डिवोटीज का डिफरेंट लेवल, और दूसरा है कि आपने वर्शिप का एलिमेंट बीच में लेके आया कि वो कैसे मददगार साबित होता है और अगर नहीं है तो वो क्या करे.
इसमें ये भी था कि हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, वी हैव टू चूज आल्सो टू एसोसिएट एंड हाउ टू, वी डोंट नो हाउ टू एसोसिएट आल्सो.
जी 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 शुक्रिया. हाँ, ये तीसरा एस्पेक्ट है. थैंक यू. इट्स नॉट ईजी बट इट नॉट इम्पॉसिबल. सो पहली चीज, जैसे आपने जब आपने तीन टर्म्स इस्तेमाल किए, कनिष्ठ मध्यम उत्तम इस्तेमाल किया, तो अप टू द लेवल ऑफ मध्यम वो साधक है. उत्तम के केस में भी जो है, लाइक अगर आप उत्तम भक्त हैं, उत्तम अधिकारी, सी दैट थिंग, सो देन द उत्तम भक्त, देन इट इज लाइक अ भावन. उत्तम अधिकारी स्टिल लास्ट स्टेज हो सकते हैं, आ सकती है, एंड देन स्टिल ऑन द लेवल ऑफ साधक, एंड देन बट सर्टेनली जो जितना ऊपर जाता जा रहा है उसका क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होती जा रही है, वो रिफाइन होता जा रहा है, और उसको फिर वो तमीज़ जो है, किसका संग करना किसका नहीं संग करना, वो ज़्यादा रिफाइन होती जाएगी. बिल्कुल ठीक है. अब शुरुआती लेवल पर जो है, जब अब बोला गया है कि जहाँ पर वो आ रहा है, नचा भक्तेशु अन्येषु, ठीक है ना, जिसका कनिष्ठ अधिकारी के केस में 11वें स्कंद में, कि उसको दूसरे भक्त, मगर उसका पहला क्वालिफिकेशन क्या है, उसका पहला क्वालिफिकेशन ये है कि वो भगवान को समझता है. ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ये छोटी मोटी क्वालिफिकेशन नहीं है. और ये जरूरी है कि आप जो है, देखिए भक्ति अगर अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, ठीक है ना, जब आप करते हैं तो इसका मतलब है ओनली कृष्ण, आप किसी और को नहीं, अन्याभिलाषा शून्यम, ठीक है ना, कृष्णा इज द सेंटर अनुशीलनम के वजह से. तो पहले ये सेटल करना जरूरी है कि उसका सिर्फ कृष्णा है. अगर एक्सक्लूसिव कृष्णा नहीं भी है, एक स्टेप नीचे भी आ जाए तो कृष्णा फर्स्ट हो कम से कम. तो ये है कि ये नहीं कि बहुत सारे हैं उसमें कृष्णा भी है मेरे लिए, अब वो बहुत सारे कौन है, नहीं नहीं, हम इस कौन में आने के बाद तो उसको ये तो पता लग जाता है कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, ये नहीं करते, दैट इज ईजी. बट मैंने खुद अपने बहुत सारे देवी देवता बना लिए हैं, वो कौन है, ये फलाना बंदा है, इसके जब तक मैं इसकी चापड़ोसी नहीं करूंगा मेरा ये काम नहीं बनेगा, ये मेरा खुदा बन गया, ये फलानी चीज़ है, इसके जब तक मैं यूं नहीं करूंगा, इसके मक्खनबाजी नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं निकलेगा, तो ये मेरा भगवान हो गया. सो ये आपको छोड़ने पड़ेंगे. धर्म प्रोज्जित कैटवत्र, ये दूसरे जो प्रोज्जित है या तो भी, तो ये पहला है. सो यहाँ तक आने में टाइम लग जाता है पहले तो. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट करप्शन जो दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, मैं इसको जो है बेवकूफ़ बना के, इसको मैं किसी तरीके से इसको बटर करके या कुछ करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या किसको थ्रेटन करके. ओनली कृष्णा. वंस दैट इज डन, देन इट इज ईजी वॉट बिलोंग्स टू कृष्णा. जब आप कृष्णा को ही नहीं देख पा रहे तो कृष्णा के देखना ज्यादा मुश्किल है. तो इसलिए वो ऑर्डर इस तरीके से है कि पहले भगवान है, हमेशा ही पहले भगवान है. सी, गुरु इज गुरु ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा, साधु इज स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा, शास्त्र इज शास्त्र बिकॉज ऑफ कृष्णा, ठीक है ना. जब हम कहते हैं गोविंदम आदि आदि पुरुषम, आदि का मतलब क्या है, वो सबसे आदि है. जब ना कोई शास्त्र था, ना साधु था, ना गुरु था, ना सृष्टि थी, ना मैं था, ना कोई था, यही मतलब है ना उसका. तो अगर वो आदि है, वो सबसे पहले, तो सबसे पहला ही रहेगा, मेरे जिंदगी में भी सबसे पहले वो रहेगा. इसलिए नहीं कि मैंने बना लिया है, नहीं, मेरे खुद के बनने से पहले वो पहला था, आज भी वो पहला है, जब सब खत्म हो जाएगा तब भी वो रहेगा, तो वो रहेगा, रख लो. तो ट्रुथ को जो है, जब मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, तो वो यही रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि वो ही वॉज द फर्स्ट, ही विल रिमेन द फर्स्ट, सो इन माई लाइफ ही वॉज द फर्स्ट. देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, जो आप बात कर रहे थे कि नाउ द डिवोटीज, एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेज में आती कि डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही, कि किसको अच्छा है, कौन बुरा है, ये. सो वर्शिप करने का जो फायदा है वो ये है कि सबसे वो अटैच करना बहुत आसान है. जब आप भगवान से ठीक से अटैच नहीं हो पा रहे तो भगवान के लोगों से अटैच होना और मुश्किल है। फिर वो जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट होती है बहुत ही सतही लेवल पर होती है। मेरा उसका विचार नहीं मिले, मेरा उसका ये नहीं मिला। अच्छा, उद्देश्य मिलते हैं, बात समझ आ रही? तो ये सारी बात जो लड़ाई है सारी होती है, मेरा तरीका उसका तरीका, तरीकेकार दोनों के अलग हैं, उसका विचार कुछ और है, मेरा विचार कुछ और है। नहीं, यहाँ वो होंगे, बात उस पे एकता ढूंढने की थी भी नहीं, ये आप गलत चीज ढूंढने पे लग गए। उद्देश्य पे एकता है कि नहीं, तो उद्देश्य है, ठीक है। तो ये है ना, जब आप कह रहे हैं कि उनमें कैसे मैं भेद करूंगी, कौन कैसा है, कौन कैसा है, ये जरूरी है। तो उसके लिए बगैर देखिए कई, तो जब तक आप उस प्रोसेस पे पूरा चलेंगे नहीं, यानी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ सकते, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भी भक्तों का चुनाव तो चले है ही, शुरुआती तौर पर जब आप गुरु का भी चुनाव करते हो, आप किस बुनियाद पर करते हैं? तो माफ कीजिएगा, जिस बुनियाद पर आपने गुरु का चुनाव किया उसी बुनियाद पर भक्तों का भी चुनाव कर रहे होंगे। अगर आपका वो जज्बाती है तो ये भी जज्बाती होगा। जब आपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अगर जज्बातियत के और अज्ञान के बेसिस पे ले लिया और अब ले चुके हैं, और या मतलब उस लेने के वक्त जो है आपको कभी दिमाग में कभी कुछ चीज क्लिक नहीं करी, तो बाकी फिर क्या बेचता है? तो इसलिए अल्टीमेटली शास्त्र, जब अब वेदांत सूत्र शुरू होता है उसकी शुरुआत में ही है शास्त्र योनित्वात, एक एक चार शास्त्र के योनि से निकलता है सब कुछ। सो वो मेरा कंपस है। प्रभुपाद जब बताते हैं शास्त्र सेंटर, चैतन्य चैतन्य में मध्य लीला 22वां अध्याय, श्लोक संख्या मुझे नहीं याद है, और एक जगह पर प्रभुपाद बताते दिस द कंपस। तो ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है, किताबें पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, देन यू नो व्हाट, थियोरेटिकली यू नो व्हाट इट इज, देन विद सम एक्सपीरियंस आल्सो, ठीक है ना। अब एक कई बार क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन चीज़ों की होती है, क्योंकि मैं सुनता कुछ हूँ, दिमाग इंटरप्रेट कुछ और करता है। जैसे तीन प्रकार की इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस क्या होती है, लोगों को सुन के सीन समझ जाए। सेकंड क्लास इंटेलिजेंस क्या होती है, जो एक्सपीरियंस है यानी कि धक्के का के सीखे। तीसरा क्या होता है, या उसके बाद भी ना सुधरे, ठीक हो गया ना, ये हो गया। दिमाग क्या कहता है, दिमाग ये कहता है कि मैं फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस का बंदा हूं, नॉट बिकॉज मैं फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस का बंदा हूं, बिकॉज फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस का बंदा मुझे बहुत ईजी लगता है, आलस का सूचक होता है। दिस इज द साइकोलॉजी कि जी हाँ ये है, तो इसलिए जो है क्योंकि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, मैं डिसाइड कर लूंगा, मुझे पता लग जाएगा। जबकि 99% केस में सेकंड क्लास इंटेलिजेंस से काम चलता है। जो आपने सवाल पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा अच्छे भक्त हैं बुरे भक्त हैं, तजुर्बे से पता चलता है। उम्मीद मेरी ये होती है कि मैं पहला जो चुनाव होगा वो मेरा चुनाव ठीक होगा, क्योंकि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, मैं फर्स्ट क्लास, क्योंकि मैंने सुन लिया और हो गया। मैं अभी उस ड्रिल से नहीं गुजरा। जो लोग सुन के समझ जाते हैं, मैं समझता हूं बहुत खुशनसीब है। वो खुशनसीब कैसे बने ये जानना जरूरी है। वो ये सारा प्रोसीजर पिछले जन्म से करके आए हैं। जो आज आप देख रहे हो कि जो सीधा छलांग मार रहे, जिसने माला उठाई वो बहुत जल्दी आगे बढ़ गया, जो बहुत बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो पीछे से बहुत धक्के खा के आया है। और आज आप धक्के खा रहे हो तो आपको लग रहा है वो नहीं, वो भी उसी प्रोसेस से आया है। तो आप उस प्रोसेस को छलांग मार के नहीं, डिवोटी का चुनाव करना आप छलांग मार के चुनाव नहीं कर पाओगे, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कुछ अच्छे मिलेंगे, खट्टे मीठे तजुर्बे होंगे, धीरे 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 विद एक्सपीरियंस यू विल कम टू दैट। और ऐसे ही होते हैं। मगर उसके दौरान अगर आपके पास इसका साथ नहीं है तो बुरा तजुर्बा आपको पीछे धकेल सकता है। बस ये तो आपको हमेशा हर सूरत हाल में जो है इसका साथ चाहिए। सो दिस इज आवर गाइडिंग लाइट, ताकि फिर आप यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस। एंड जब तक आपको और जब और देखिए ना, अगर आपके पास अच्छे भक्तों की कमी हो रही है तो इसीलिए कि अगर आपका आप वर्शिप करते हैं, अगर भगवान के साथ आप हैं तो कोई तो है आपका सहारा, धीरे 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 और बढ़ जाएगा तो कारवां आगे बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर वो शुरुआत का जो वो है, वो जो असली है जिसके आप भक्ति कर रहे थे, आपका उसके साथ ही जुड़त अगर बहुत ढीला है तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है पवित्र। अच्छा जी, और सवाल है?
एक और क्वेश्चन था भी, जस्ट टू एड ऑन, मतलब क्लैरिफाई कर रहा था कि जैसे आपने बोला भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक लाइक वी हर्ड ऑल्सो कि गुरु एंड कृष्ण इज इन पैरेलल लाइन, मतलब गुरु और कृष्ण, बिकॉज वी कांट सी, मतलब कृष्ण को समझ नहीं सकते जब तक गुरु की उससे नहीं समझ सकते.
अगेन से चीज जो फिलोसफी होती है ना, आपको ये देखना पड़ेगा वेयर अप्लाइज व्हाट, ठीक है ना. जब आप फिलोसफी को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब कंडीशनल होती है, वो फॉर ऑल द टाइम्स एंड सर्कमस्टेंस प्रिंसिपल नहीं है. वो किस वक्त क्या चीज़ है. अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं, मैं इसका काउंटर आर्गूमेंट देता हूँ कि जी आप भगवान को गुरु के बगैर नहीं समझ सकते. अच्छा मुझे बता दीजिए, गुरु को भगवान के बगैर समझ सकते हैं क्या. आप जब गुरु का चुनाव करते हैं तो आप किसके पास जाते हैं मांगने के लिए.
इन रिलेशनशिप बोथ बोथ.
हाँ, इसका मतलब ये हो गया ना. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक्सक्लूसिव लीनियर लाइन नहीं है. ये कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि अब आपके जिंदगी में गुरु आ गए तो भगवान पीछे हो गए. कृष्णा इज नेवर सेकंड, कृष्णा इज ऑलवेज फर्स्ट. आप गुरु को लेके आए थे उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको उस रिलेशनशिप को चैलेंज करने के लिए नहीं. सो इट्स नॉट लाइक दैट. तो ये यहां पर जाकर गड़बड़ होती है. जब गुरु का रोल जो है, दीक्षा का क्या मतलब है, हुम यू आर गेटिंग मैरिड टू, किससे शादी हो रही है आपकी, दीक्षा का मतलब क्या है, सर तो हिला दिया पर होता क्या है, किससे शादी हो रही है. खामोशी जा गई.
परंपरा.
जी हाँ, दीक्षा का मतलब है भगवान, गुरु भगवान के साथ आपका कनेक्शन बना के दे रहे. तो आपका कनेक्शन कभी नहीं कट रहा. सो आप उसको कभी भी इस तरीके से, वो कभी भी नहीं, वो कट भी नहीं सकता. जीव कृष्ण का क्या है, अंश है, नित्य दास है. तो वो इटर्नल रिलेशनशिप है. तो उसको सिर्फ फैसिलिटेट किया जा सकता है. गुरु का जो रोल होता है उसके अंदर जो है वो अज्ञान है तुम्हें नंद से ज्ञान अंजना चक्षुदान दिल और जय जन्म जन्म. सो वो गंदगी हटाना है. वो रिलेशनशिप हमेशा कायम है. तो कभी भी आप ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में गुरु आ गया तो आप कृष्ण पीछे हो गए. फिर फायदा क्या हुआ, तो नुकसान हो गया. इससे तो पहले अच्छा था जब कम से कम भगवान तो थे. आप गुरु को जो है टू द योर एडवांटेज इस्तेमाल करते हैं, नॉट यू नॉट दैट रिलेशनशिप को जो है गुरु के साथ आपका रिलेशनशिप है तो आप एज ए एडवांटेज इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज ए लायबिलिटी. सो दैट्स द आइडिया. एंड इट्स नॉट पैरेलल. आई एम सॉरी टू से, आई मीन आई डिसएग्री. गुरु एंड कृष्णा का जो रिलेशनशिप हमारा है वो पैरेलल नहीं है, वो इन लाइन है. That's why you've got a parampara, a disciplic succession. How can it be parallel? It has to be in the same line. ये बाहर होते हैं parallel system. उनके मंत्र भी होते हैं. मैं मेरे घर वाले पहले जाते थे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बचपन में जाता था. वो उनका मंत्र होता था गुरु की कृपा ही केवलम, गाते थे वो पूरा गुरु की कृपा ही केवलम. गुरु की सिर्फ गुरु की कृपा चाहिए. इसका मतलब आप उसको भगवान की कृपा की जरूरत नहीं रह गई और. तो ये बहुत डेंजरस है.
And you spoke about the purity of intent. This whole topic is belong to basically on that.
Yeah.
So how a sadhaka maintain this purity of intent?
Then he needs that kind of people. Yeah. And मैं बार-बार बता रहा हूँ, it starts with this. It always starts with this because ये बाद में आएगा. कौन है? क्योंकि natural question आएगा कि वो कैसे चलो, जो आपका question था, क्योंकि फिर तो वो circular argument हो गया. कि अगर मैं बोलता हूँ कि एसोसिएशन से ठीक होगा, बोलोगे एसोसिएशन कैसे पहचानूंगा. देयरफॉर जो सेंटर है वो ये है. जब आप कहते हैं गुरु साधु शास्त्र तो आप समझते हैं सर्कुलर, एक्चुअली सर्कुलर नहीं है. इसका सेंटर जो है, इसका जो सर्कम सेंटर है वो शास्त्र है. वहां से शुरू होता है. इसीलिए सबसे पहले इस पर बड़ा जोर दिया जाता है कि आप पढ़ो 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 पढ़ो. ठीक है, है सवाल? अच्छा पूछ लो, चलो खत्म करो जल्दी. मैंने 48 पे छोड़ दिया था.
भाई जैसे अभी आपने लेक्चर में बताया था कि पहली जो स्टेप वन है वो जीव लेता है, मतलब गलती रॉन्ग एसोसिएशन को
इनिशिएटिव जो है वो जीव के हाथ में.
बस मेरे पे ये प्रश्न वैसे रहता ही है कि हम ये भी देखते हैं कि भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि, गुणों से प्रभावित होकर कोई कार्य करता है, कोई संग करता है.
तो गुणों के प्रभाव में आया कैसे वो लाया नहीं गया है, वो आया है.
तो बद्ध जीव तो अनंत काल से गुणों के प्रभाव में है ही.
तो आया है, वो है नहीं है. आया है, ये ची चोज टू, दैट वॉज हिज चॉइस. नहीं तो ये जो कार्डिनल आर्गुमेंट जो है, ओरिजिनल सिन का जो आर्गुमेंट है, इसका तो सारा ब्लेम भगवान पे है, उसने डाला है, आया कैसे हो यहां. अनंत काल का मतलब जो वहां पर है वो अनंत काल इन रिलेशन टू वेरी लॉन्ग टाइम है. अगर वो वाकई में अनंत होता ना तो अनंत नहीं होता, फिर वो अनादि होता तो अनंत अनंत होता. कर्म जो है वो अनादि है, अनंत नहीं है, इसलिए तो जीव निकल सकता है. अगर कर्म अनादि है इधर से और अनंत है इधर से तो खत्म है खेल उसका. फिर आप भक्ति यूं कर रहे हैं, फिर तो हम निकल ही नहीं सकते. गेटिंग माय पॉइंट? सो जीव का जो उधर का ट्रैक है वो अनादि बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम है, नॉट बिकॉज इज एक्चुअली बिकॉज इट डजेंट मैथमेटिकली डजेंट फिट ना. आप अगर इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी तो इधर ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं है. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का? इट इज नॉट लाइक दैट, जस्ट लॉन्ग टाइम.
तो जब पहले रॉन्ग डिसीजन लिया,
हाँ,
जितने ही बद्ध जीव हैं बहुत ही
शायरी है ना, लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई, वही चीज है. ठीक है ना, छोटी सी आपने गलती करी है, अब सजा पाओ उसकी. एक्चुअली गलती छोटी नहीं है, गलती बहुत बड़ी है वो.
अब तो इसका रेक्टिफिकेशन
ये है पाथ, ये भक्ति पाथ ऑफ रेक्टिफिकेशन ही तो है, जब हम इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ रिपेंटेंस.
तो भैया हम देखते हैं कुछ बद्ध जीव सही डिसीजन ले पाते हैं, पाथ को सिलेक्ट कर पाते हैं,
और हर कोई ले पाता है, लेता नहीं है. ये सारा है तो ये क्या कंस को नहीं पता? बार बार ये तो बात हो रही है, उसकी इनकॉम्पिटेंसी इशू नहीं है, उसका विल इशू है. ऐसा नहीं उसको नहीं मालूम, उसको मालूम है, उसका नहीं करना विल है. यही जीव की जिद होती है भगवान के खिलाफ. ओरिजिनल प्रॉब्लम जो वो यही है, भगवान की बात नहीं माननी, किसी और को ले आओ बीच में, अपना भगवान बना लो. मैं बात मानूंगा, इशू नहीं है कि मैं बात नहीं मानूंगा, इसकी नहीं मानूंगा. ये जो देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसका क्या मतलब? बात नहीं मानते, बात मानते हैं, इनकी नहीं माननी, इशू वो नहीं है. बैर आपका भगवान से है, therefore anything which is जो भगवान से आ रहा है you won't accept, वो किसी और से आएगा you'll accept. इसीलिए भगवान भक्तों को भेजते हैं ना, कि अगर ये मैं बोलता हूं चल मेरे साथ you won't come, somebody else वो बोलेगा चलो मेरे साथ मैं तैयार हूं. then gradually वो भक्त जो है negotiate करते 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 आपके साथ, गुरु है, साधु है, शास्त्र है, वो आपसे नेगोशिएट करते करते दे ब्रिंग यू टू दैट पॉइंट वेयर यू आर कन्विंस्ड कि हाँ नहीं ठीक है, ही इज आफ्टर ऑल नॉट सच ए बैड पर्सन, मे बी वी कैन लिव टुगेदर, देन गोइंग बैक होम बैक टू गॉड. इशू सिस्टम से नहीं था, इशू बंदे से था. क्यों? क्योंकि आपका रास्ता पर्सनल है, इम्पर्सनल नहीं है. सो ये इशू आप देखेंगे, आप मैं सटल आपको सटल एग्जांपल देता हूं. अभी सटल एग्जांपल अगर चला जाएगा समझ जाएगा सब गर्दन हिला रहे होंगे. सच बता रहा हूं, भगवान है, कृष्णा है, भगवान कौन है? कृष्णा है. नहीं, इनको सरेंडर नहीं करना. मुझे ना ये बलराम जी ज्यादा पसंद है, ये मुझे ना नित्यानंद प्रभु ज्यादा पसंद है, ये ना मुझे राधा रानी ज्यादा पसंद है, ये फलानी सखी पसंद है, फलाना ये पसंद है, क्योंकि वो इट्स कमिंग फ्रॉम देयर. I will surrender to these person but not to Krishna. अच्छा, अब इमीडिएटली क्या दिमाग कैसे चलेगा? फिलोसफी को ट्विस्ट कर दो. कैसे? नहीं नहीं, भगवान कहते हैं ना उनके थ्रू आना होता है, पर तुम्हारी वजह उसको सरेंडर करना वो नहीं था, तुम्हारी वजह कुछ और है. यू वॉन्ट टू अवॉइड कृष्ण. शास्त्र कुछ कहता है पर तुम जब उसको अप्लाई करते हो उसकी वजह वो नहीं होती, उसकी वजह कुछ और है. और ये जो अवलोकन है ये हर किसी का अपने पास है, कोई किसी को ठेके पे नहीं दे सकता, ना कोई ठेके पे ले सकता. जो ये 10:4:1 में जहां प्रभुपाद बोल रहे हैं, किसी ने बोला नहीं, वो खुद बन गया. ओके, सो दैट वी हैव टू सी कि व्हाई नॉट कृष्णा. इट्स लाइक इन्होंने जो बोला कि गुरु को बीच में ले आए, तो अभी गुरु को क्यों बीच में ले आए? आपका शाश्वत संबंध किससे है? भगवान से है ना, गुरु कैसे बीच में? इसलिए नहीं आया कि वो फैसिलिटेटर है आपके फॉर्स नहीं, इसलिए इट इज इजी आई कैन सरेंडर दिस पर्सन आई हैव ए प्रॉब्लम विथ. दिस इज द स्ट्रगल ऑफ द साधक. लेमैन का स्ट्रगल नहीं है. लेमैन को तो पता ही कुछ नहीं है. उसको तो जहां खड़ा कर दो वहीं हाथ जोड़ लेगा. उसको इशू नहीं है. जब आप एक साधना करते करते एक सर्टन स्टेज पे आते हैं, देन आप ढूंढना शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम विद कृष्णा. इट इज नॉट दैट मेरे को सरेंडर करने में इश्यू आता है. नहीं आता. कृष्णा को सरेंडर करने में इश्यू आता है. ये वो रूट है. दैट मीन्स और मेहनत और मेहनत और जाने की जरूरत है, और पढ़ने की जरूरत है, और इस प्रोसेस को और अप्लाई करने की जरूरत है. gradually I become favorable towards Krishna.
Thank you.
ठीक है, आप रखते हैं, बहुत लेट हो गया. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय. निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे.